क्या तू मुझे प्यार करता है? बरकत पाने का राज। यूहन्ना की इंजील 21। जुमे के दिन ईसा मसीह को सजाए मौत दी गई। शागिर्द डर के मारे छुप गए। उनके ख्वाब धूल में मिलाए गए थे। वो सन रह गए। आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हफ्ते का दिन गुजर गया, फिर इतवार का दिन शुरू हुआ। उस दिन कुछ लोगों ने अचानक ईसा मसीह को देखा, और वो भूत नहीं था, उसका पक्का जिस्म था। बेशक वो जगह और वक्त का पाबंद नहीं था, लेकिन वो खाना खा सकता था। उसकी आवाज और अंदाज सब कुछ वैसा ही था। शागिर्द उसे छू सकते थे, बिल्कुल आम आदमी की तरह। तब उसने शागिर्दों को फरमाया कि गलील जाकर मुझसे मिलो। अब यूहन्ना रसूल हमें गलील का एक वाक्या सुनाता है। इससे हम कई सबक सीखते हैं। पहला सबक, अच्छे चरवाहे की पुकार सुनो। अच्छे चरवाहे की पुकार सुनो। 6 शागिर्द पत्रस के साथ जमा थे। तब पत्रस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। मछली पकड़ना तो उसका पेशा ही था। ये काम करते हुए वो परवान चढ़ा था। दूसरों ने कहा, हम भी साथ जाएंगे। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, लेकिन उस पूरी रात एक भी मछली हाथ न आई। सुबह सवेरे ईसा मसीह झील के किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन धुंधलेपन में शागिर्दों ने उसे ना पहचाना। उसने उनसे पूछा, बच्चों, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिल गया? आज ईसा मसीह किनारे पर खड़े हमें भी पुकार रहा है। शायद हम उसे अब तक धुंधलेपन में साफ पहचान नहीं सकते। हम अपने मामूल के काम में जुटे हैं, मगर खास बरकत हासिल नहीं हो रही है। तब अच्छा है कि हम अच्छे चरवाहे की आवाज सुन ले। वो तो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। क्या हम उसकी आवाज सुनते हैं? ईसा मसीह के सवाल पर शागिर्दों ने जवाब दिया कि अब तक कुछ नहीं मिला। क्या शागिर्दों को ईसा मसीह के बिना मछलियां मिल गई थीं? एक भी नहीं। कितनी बार हम बड़ी मेहनत मशक्कत करते हैं और कोई फल, कोई अच्छा नतीजा नजर नहीं आता। ऐसे मौकों पर इंसान सोचता है कि क्या खुदा मुझे सजा दे रहा है? मेरे दोस्त, पहले अच्छे चरवाहे की पुकार सुनो। दूसरा सबक, अच्छे चरवाहे की बरकत पाओ। अच्छे चरवाहे की बरकत पाओ। ईसा मसीह ने कहा, अपना जाल कश्ती के दाएं हाथ डालो, फिर तुमको कुछ मिलेगा। उन्होंने ऐसा किया तो मछलियों की इतनी बड़ी तादाद थी कि वो जाल कश्ती तक न ला सके। जब ईसा मसीह ने साथ दिया तो क्या उनको मछली मिल गई? हाँ, इतनी मछलियां कि जाल फटने का खतरा था। तब यूहन्ना ने पत्रस से कहा, ये तो खुदावंद है। यूहन्ना ईसा मसीह के बहुत करीब रहा था, इसलिए उसे जल्द ही पता चल गया कि ये कौन है। उसकी बात सुनते ही पत्रस अपनी चादर ओढ़कर पानी में कूद पड़ा। उसने चादर को काम करने के लिए उतार लिया था। यूहन्ना समझने में तेज था, जबकि पत्रस कदम उठाने में तेज था। दूसरे शागिर्द कश्ती पर सवार उसके पीछे आए। वो किनारे से ज्यादा दूर नहीं थे, तकरीबन 100 मीटर के फासले पर, इसलिए वो मछलियों से भरे जाल को पानी में खींच खींच कर खुश्की तक लाए। वो कश्ती से उतरे तो देखा कि लकड़ी के कोयलों की आग पर मछलियां भुनी जा रही हैं और साथ रोटी भी है। ईसा ने उनसे कहा, उन मछलियों में कुछ ले आओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। पत्रस कश्ती पर गया और जाल को खुश्की पर घसीट लाया। ये जाल 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, तो भी वो ना फटा। यूहन्ना रसूल हमें ये सारा माजरा इतनी तफसील से क्यों बताता है? ईसा मसीह उन्हें एक अहम सबक सिखाना चाहता है, ये कि मेरे बिना तुम्हारा काम फलदार नहीं हो सकता, चाहे तुम कितनी मेहनत मशक्कत क्यों ना करो। मैं ही अबदी जिंदगी का चश्मा हूं, पल दर पल मेरी आवाज सुनो, तभी बरकत की बारिश तुम पर बरसेगी, तभी बरकत का जाल फटेगा नहीं। तीसरा सबक, अच्छे चरवाहे की तकवियत पाओ, अच्छे चरवाहे की तकवियत पाओ। ईसा मसीह ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। किसी भी शागिर्द ने सवाल करने की जरूरत ना की कि आप कौन हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदावंद ही है। फिर ईसा मसीह ने रोटी और मछली खिलाई। ये कितनी अनोखी ज़ियाफ़त थी, उन्होंने कितनी बार अपने आका के साथ खाना खाया था। बेशक उन्हें वो खाना भी याद आ रहा था जब ईसा मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। उस वक्त लोग जोश में आकर उसे दुनिया का बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन वो चुपके से वहां से खिसक गया था। अब बात बिल्कुल फर्क थी। अब शागिर्दों के सामने आसमान का बादशाह खुले तौर पर खड़ा था, वो जिसने फरमाया था, मैं ही जिंदगी की वो रोटी हूं जो आसमान से उतर आई है, जो इस रोटी से खाए वो अबद तक जिंदा रहेगा। यूहन्ना की अंजील 6:51। अपनी कुर्बानी से उसने इंसान को ये जिंदगी बख्श दी थी, वो अबदी जिंदगी जो ईमानदार के दिल में होती है और जो उसे दरियाए मौत के पार अच्छे चरवाहे की गोद में ले जाती है। लेकिन ईसा मसीह एक और बात भी दिखाना चाहता था। ये समझने के लिए आओ हम एक सवाल पूछें, क्या शागिर्दों के नाश्ते के लिए उनकी मछलियां जरूरी थीं? बिल्कुल नहीं। जब शागिर्द झील के किनारे पर पहुंचे तो कोयलों पर मछली भुनी जा रही थी और साथ रोटी थी। फिर भी उसने फरमाया कि पकड़ी मछलियों में से कुछ खाने के लिए लाओ। इससे वो एक बात दिखाना चाहता था। क्या बात दिखाना चाहता था? वो ये दिखाना चाहता था कि मुझे तुम्हारी खिदमत पसंद है, मैं चाहता हूं कि तुम मिलकर मेरी खातिर मेहनत मशक्कत करो। बेशक अब से तुम मछली नहीं पकड़ोगे, अब से तुम माहीगीर के बजाय आदमगीर यानी लोगों को पकड़ने वाले होगे। किस तरह? उन्हें मेरे घर वाले बनने की दावत देने से। एक और सवाल उभर आता है, ईसा मसीह शागिर्दों के साथ खाने की रफाकत क्यों रखना चाहता था? वो चाहता था कि शागिर्द उसके हजूर मिलकर खाना खाने की अहमियत समझें। मिलकर उसके हजूर खाना खाने की क्या अहमियत है? उसके हजूर खाना खाना रफाकत का सबसे गहरा निशान है। ये क्यों सबसे गहरा निशान है? इसलिए कि ये उस आखिरी खाने की तरफ इशारा है जो ईसा मसीह ने शागिर्दों के साथ खाया। उसके बारे में लिखा है, ईसा ने रोटी लेकर कहा, ये लो और खाओ, ये मेरा बदन है। फिर उसने मैं का प्याला उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, ये मेरा खून है, नई अहद का वो खून जो बहुतों के लिए बहाया जाता है ताकि उनके गुनाहों को माफ कर दिया जाए। मत्ती की अंजील 26:26-29 तक। आज तक उसके हजूर मिलकर खाना खाने से हम जो शागिर्द हैं इस खाने की याद करके वो ताकत पाते हैं जो इस दुनिया में कायम रहने के लिए दरकार है। साथ साथ हम उस दिन की खुशी मनाते हैं जब हम उसके साथ मिलकर उसके अबदी घर में ज़ियाफ़त करेंगे। क्या आप अच्छे चरवाहे की ये तकवियत पाते रहते हैं? मैं दोहराता हूँ, पहले अच्छे चरवाहे की पुकार सुनो, दूसरे अच्छे चरवाहे की बरकत पाओ, और तीसरे अच्छे चरवाहे की तकवियत पाओ। चौथा सबक, अच्छे चरवाहे का प्यार कबूल करो। अच्छे चरवाहे का प्यार कबूल करो। खाना खाने के बाद ईसा मसीह पत्र से मुखातिब हुआ, बोला, शमाउन, क्या तू इनकी निस्बत मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है? उसने ये क्यों पूछा? सलीबी मौत से पहले ईसा मसीह ने फरमाया था कि आज रात तुम सब मेरी बाबत बरगश्ता हो जाओगे। उस वक्त पत्रस ने एतराज किया था कि दूसरे बेशक सब बरगश्ता हो जाएं, लेकिन मैं कभी नहीं हूंगा। मतलब है, मैं दूसरों से ज्यादा वफादार हूं। फिर भी उसने बाद में 3 बार कहा था कि मैं ईसा मसीह को नहीं जानता। यही वजह है कि ईसा मसीह ने पूछा कि क्या तू मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। देखो हमारे आका की नरमी, उसने झिड़की ना दी। इस नरम और सादा सवाल से ही वो पत्रस सही पटरी पर लाया। सही पटरी क्या थी? ये कि अपनी ताकत और अपनी ही वफादारी पर फख्र मत कर, बल्कि उस काम पर जो मैंने तुझसे मोहब्बत रखने के बायस किया है। पहले मेरा ये प्यार कबूल कर, तभी तू सही प्यार कर सकेगा, मुझे भी और दूसरों को भी। आइंदा मत ललकारना कि मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा। आइंदा ये मान ले कि तू अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। आइंदा फरियाद कर के ऐ खुदावंद, मेरी मदद कर ताकि मैं तुझे प्यार कर सकूं, तेरे पीछे चल सकूं। लेकिन ईसा मसीह को ये सारी बातें कहने की जरूरत नहीं है। वो बस ये पूछता है कि क्या तू मुझे प्यार करता है। वो क्यों सिर्फ ये पूछता है कि क्या तू मुझे प्यार करता है? जो मसीह का घर वाला बन जाता है, उसके रिश्ते का बंधन मोहब्बत है। ईसा मसीह का प्यार उसे मजबूत कर देता है, और जवाब में ही वो उसे और दूसरों को प्यार कर सकता है। मैं दोहराता हूं, पहले अच्छे चरवाहे की पुकार सुनो, दूसरे अच्छे चरवाहे की बरकत पाओ, तीसरे अच्छे चरवाहे की तकवियत पाओ, और चौथे अच्छे चरवाहे का प्यार कबूल करो। एक पांचवा सबक, अच्छे चरवाहे की फितरत अपनाओ। अच्छे चरवाहे की फितरत अपनाओ। पत्रस ने जवाब दिया, जी खुदावंद, आप तो जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। ईसा मसीह बोला, फिर मेरे लेलों को चरा। ये लेले कौन है? लेले वो सब हैं जो अच्छे चरवाहे की भेड़े हैं। चराने का क्या मतलब है? जिस तरह ईसा मसीह तमाम भेड़ों का अच्छा चरवाहा है, उसी तरह वो चाहता है कि पत्रस छोटे पैमाने पर चरवाहा हो। वो दूसरों से अच्छे चरवाहे का सा सलूक करे। हर शागिर्द को अच्छे चरवाहे की फितरत अपनानी है। अच्छा चरवाहा क्या करता है? अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। वो हर एक की फिक्र करता है। इतनी फिक्र कि उसने अपनी जान अपनी भेड़ों की खातिर दी। सोच लो, अगर हर शागिर्द छोटे पैमाने पर अच्छे चरवाहे की फितरत अपनाए तो कितना भला होगा। मिसाल के तौर पर, अगर माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे चरवाहे हो तो क्या खूब। लेकिन ध्यान दो, जो भी चरवाहा हो वो तब कामयाब होगा जब वो ईसा मसीह को प्यार करेगा, और वो तब ईसा मसीह को ठीक तरह से प्यार करेगा जब उसने उसका प्यार कबूल किया होगा। तब ईसा मसीह ने एक और मर्तबा पूछा, शमाउन, کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ پطرس نے جواب دیا،
جی خداوند، آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں۔
عیسیٰ مسیح بولا، پھر میری بھیڑوں کی غلہ بانی کر۔ تیسری بار اس نے اس سے پوچھا، شمعون، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟
تیسری بار یہ سوال سننے سے پطرس کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے کہا، خداوند، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں۔
عیسیٰ مسیح نے اس سے کہا، میری بھیڑوں کو چرا۔
اس نے یہ سوال تین بار کیوں پوچھا؟
پطرس نے تین بار کہا تھا کہ میں عیسیٰ مسیح کو نہیں جانتا، اس لیے عیسیٰ مسیح نے تین بار یہ سوال پوچھا۔ یہ عیسیٰ مسیح کا ہم سے سوال بھی ہے۔ بے شک ہم سب سے بار بار غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بے شک ہم اپنی حرکتوں سے کئی بار اسے دکھ پہنچاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں جھڑکی نہیں دیتا۔ وہ بس یہی سوال پوچھتا رہتا ہے کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس سے محبت سب کچھ ہے۔ اگر یہ پیار نہ ہو تو سب کچھ بکواس ہے، چاہے ہم کتنا اچھا کام کیوں نہ کریں۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو مان کر اس کا پیار قبول کریں اور پطرس کے ساتھ کہیں کہ اے خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ تبھی وہ ہمیں اچھے چرواہے کی فطرت دیتا ہے، وہ فطرت جو اس کی مدد کے بغیر ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ تبھی وہ ہمیں وہ برکت دیتا ہے جو ہم اپنے زور سے پا نہیں سکتے۔ کئی بار اس کی فطرت کو اپنانے سے بہت سخت نتیجے نکل سکتے ہیں۔ عیسیٰ مسیح نے فرمایا، میں تجھے سچ بتاتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو خود اپنی کمر باندھ کر جہاں جی چاہتا گھومتا پھرتا تھا، لیکن جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائے گا اور کوئی اور تیری کمر باندھ کر تجھے لے جائے گا جہاں تیرا دل نہیں کرے گا۔ یہ بات اس طرف اشارہ تھی کہ پطرس کس قسم کی موت سے اللہ کو جلال دے گا۔ پھر اس نے اسے بتایا، میرے پیچھے چل۔
عیسیٰ مسیح یہ کہنے سے کس طرف اشارہ کر رہا تھا؟
بعد میں پطرس شہید ہو جائے گا۔ قدیم تاریخی گواہ لکھتے ہیں کہ کچھ سال کے بعد اسے صلیب پر چڑھایا گیا۔ اچھے چرواہے کے قدموں میں چلنے سے یہی نتیجہ نکلا۔ آخر میں مسیح نے کیا ہدایت دی؟ میرے پیچھے چل۔ یہ صحیح پیار ہے۔ جو عیسیٰ مسیح کو پیار کرتا ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ بھیڑ اپنے اچھے چرواہے کی آواز سن کر اس کے پیچھے چلتی ہے۔ اسے پورا بھروسہ ہے کہ جہاں چرواہا چلتا ہے وہاں میں محفوظ ہوں، چاہے یہ راستہ صلیب کا راستہ کیوں نہ ہو۔
میں دہراتا ہوں، پہلے، اچھے چرواہے کی پکار سنو۔ دوسرے، اچھے چرواہے کی برکت پاؤ۔ تیسرے، اچھے چرواہے کی تقویت پاؤ۔ چوتھے، اچھے چرواہے کا پیار قبول کرو۔ اور پانچویں، اچھے چرواہے کی فطرت اپناؤ۔ ایک چھٹا سبق، آپسی جلن چھوڑ دو، آپسی جلن چھوڑ دو۔ پطرس نے مڑ کر دیکھا کہ یوحنا رسول ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے سوال کیا، خداوند، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پطرس نے یہ کیوں پوچھا؟ یوحنا پطرس کی طرح عیسیٰ مسیح کے بہت قریب تھا۔ پطرس چاہتا تھا کہ اب عیسیٰ مسیح یوحنا کے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ بتائے، یعنی کیا اسے بھی شہادت کا جلال ملے گا؟ لیکن عیسیٰ مسیح نے ایسا نہ کیا۔ اس نے جواب دیا، اگر میں چاہوں کہ یہ میرے واپس آنے تک زندہ رہے تو تجھے کیا؟ बस तू मेरे पीछे चलता रह।
क्या उसने यूहन्ना रसूल के बारे में कुछ बताया?
नहीं।
उसने कहा था कि तुझे क्या
मतलब है, दूसरों की तरफ मत देखना कि उनके साथ क्या होगा, अपने आप पर ध्यान दे,
मेरे पीछे चलता रह।
कितनी अच्छी हदायत। हम सब हमेशा इस खतरे में होते हैं कि अपने आप का मुकाबला अपने साथियों से करें।
इससे हम में एहसास कमतरी, हसद या अपने आप पर फख्र पैदा होता है।
लेकिन ईसा मसीह बस एक ही चीज हमसे चाहता है, ये कि हम उसे प्यार करके उसके पीछे चलें, कि हम अच्छे चरवाहे की आवाज सुनकर पूरे भरोसे के साथ उसके कदमों में चलें।
कुछ लोगों ने ये बात सुनकर गलत नतीजा निकाला, ये कि यूहन्ना रसूल नहीं मरेगा।
लेकिन ईसा मसीह ने ये बात नहीं की थी, उसने सिर्फ ये कहा था, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे वापस आने तक जिंदा रहे तो तुझे क्या।
अब देखो हम इंसानों की गलत सोच। बाद में लोग अंदाजा लगाने लगे कि यूहन्ना रसूल मसीह के वापस आने तक जिंदा रहेगा।
उन्हें इस पर जोर देना चाहिए था कि हम खुद किस तरह उसे प्यार करते हैं, हम खुद किस तरह उसके पीछे चलते हैं।
मसीह तो ये कहने से इस पर जोर दे रहा था कि यूहन्ना की फिक्र मत करना, बल्कि अपनी ही फिक्र कर कि क्या मैं अच्छे चरवाहे को प्यार करता हूं, क्या मैं उसके पीछे चल रहा हूं।
फिर भी उनमें से कुछ इस साफ बात से फजूल नतीजे निकालने लगे थे।
मैं दोहराता हूं,
अच्छे चरवाहे की पुकार सुनो, दूसरे अच्छे चरवाहे की बरकत पाओ, तीसरे अच्छे चरवाहे की तकवियत पाओ, चौथे अच्छे चरवाहे का प्यार कबूल करो, पांचवें अच्छे चरवाहे की फितरत अपनाओ, छठे आपसी जलन छोड़ दो। अब एक आखिरी बात, अच्छे चरवाहे की सच्चाई अपनाओ, अच्छे चरवाहे की सच्चाई अपनाओ।
यूहन्ना लिखता है, ये वो शागिर्द है जिसने इन बातों की गवाही देकर इन्हें कलम बंद कर दिया है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है।
यूहन्ना की अंजील 21 आयत 24।
यूहन्ना किस बात पर जोर देता है?
एक बार फिर यूहन्ना इस पर जोर देता है कि जो कुछ मैंने सुनाया है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है।
इस पर और जोर देने के लिए वो फरमाता है कि हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है।
जब वो हम कहता है तो मतलब ये है कि ये न सिर्फ मेरी गवाही है, बहुत सारे लोगों ने इसकी तस्दीक की है।
अगर मैं कोई गलत बात कलम बंद करता तो वो जरूर एतराज करते।
इसलिए वो इस पर जोर देता है कि हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है।
ये बात हमें आखिर में याद दिलाती है कि जो अच्छे चरवाहे का सच्चा शागिर्द है, उसकी जिंदगी की बुनियाद और मरकज सच्चाई है। उसकी जिंदगी में झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। क्या आपकी जिंदगी इस सच्चाई पर मबनी है?
सच्चाई ही हमारे कानों को खोल देती है ताकि हम अच्छे चरवाहे की पुकार सुन सकें, उसकी बरकत और तकवियत पा सकें, उसका प्यार कबूल करके उसकी फितरत अपना सकें और आपसी जलन के बायस डूब ना जाएं।
आमीन।
यूहन्ना की इंजील 21। इसके बाद ईसा एक बार फिर अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ जब वो तिबरियास यानी गलील की झील पर थे। ये यूं हुआ, कुछ शागिर्द शमाउन पत्रस के साथ जमा थे, तोमा जो जुड़वा कहलाता था, नतनेल जो गलील के काना से था, जबदी के दो बेटे और मजीद दो शागिर्द। शमाउन पत्रस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं।
दूसरों ने कहा, हम भी साथ जाएंगे। चुनांचे वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए।
लेकिन उस पूरी रात एक भी मछली हाथ न आई। सुबह सवेरे ईसा झील के किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों को मालूम नहीं था कि वो ईसा ही है। उसने उनसे पूछा, बच्चों, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिल गया है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। उसने कहा, अपना जाल कश्ती के दाएं हाथ डालो, फिर तुमको कुछ मिलेगा। उन्होंने ऐसा किया तो मछलियों की इतनी बड़ी तादाद थी कि वो जाल कश्ती तक न ला सके। इस पर खुदावंद के प्यारे शागिर्द ने पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। ये सुनते ही कि खुदावंद है, शमौन पतरस अपनी चादर ओढ़कर पानी में कूद पड़ा। उसने चादर को काम करने के लिए उतार लिया था। दूसरे शागिर्द कश्ती पर सवार उसके पीछे आए। वो किनारे से ज्यादा दूर नहीं थे, तकरीबन 100 मीटर के फासले पर थे, इसलिए वो मछलियों से भरे जाल को पानी में खेंच खेंच कर खुश्की तक लाए। जब वो कश्ती से उतरे तो देखा कि लकड़ी के कोयलों की आग पर मछलियां भुनी जा रही हैं और साथ रोटी भी है। ईसा ने उनसे कहा, उन मछलियों में से कुछ ले आओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस कश्ती पर गया और जाल को खुश्की पर घसीट लाया। ये जाल 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, तो भी वो ना फटा। ईसा ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। किसी भी शागिर्द ने सवाल करने की जरूरत ना की कि आप कौन हैं, क्योंकि वो तो जानते थे कि ये खुदावंद ही है। फिर ईसा आया और रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी उन्हें खिलाई। ईसा के जी उठने के बाद ये तीसरी बार थी कि वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। नाश्ते के बाद ईसा शमाउन पत्र से मुखातब हुआ, यूहन्ना के बेटे शमाउन, क्या तू इनकी निस्बत मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है? उसने जवाब दिया, जी खुदावंद, आप तो जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। ईसा बोला, फिर मेरे लेलों को चरा। तब ईसा ने एक और मर्तबा पूछा, शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? उसने जवाब दिया, जी खुदावंद, आप तो जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। ईसा बोला, फिर मेरी भेड़ों की गल्ला बानी कर। तीसरी बार ईसा ने उससे पूछा, शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे प्यार करता है? तीसरी दफा ये सवाल सुनने से पतरस को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, खुदावंद, आपको सब कुछ मालूम है, आप तो जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझे सच बताता हूं कि जब तू जवान था तो तू खुद अपनी कमर बांध कर जहां जी चाहता घूमता फिरता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथों को आगे बढ़ाएगा और कोई और तेरी कमर बांध कर तुझे ले जाएगा जहां तेरा दिल नहीं करेगा। ईसा की ये बात इस तरफ इशारा थी कि पतरस किस किस्म की मौत से अल्लाह को जलाल देगा। फिर उसने उसे बताया, मेरे पीछे चल। पतरस ने मुड़कर देखा कि जो शागिर्द ईसा को प्यारा था वो उनके पीछे चल रहा है। ये वही शागिर्द था जिसने शाम के खाने के दौरान ईसा की तरफ सर झुकाकर पूछा था, खुदावंद, कौन आपको दुश्मन के हवाले करेगा? अब उसे देखकर पतरस ने सवाल किया, खुदावंद, इसके साथ क्या होगा? ईसा ने जवाब दिया, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे वापस आने तक जिंदा रहे तो तुझे क्या, बस तू मेरे पीछे चलता रह। नतीजे में भाइयों में ये ख्याल फैल गया कि ये शागिर्द नहीं मरेगा, लेकिन ईसा ने ये बात नहीं की थी। उसने सिर्फ ये कहा था, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे वापस आने तक जिंदा रहे तो तुझे क्या। ये वो शागिर्द है
जिसने इन बातों की गवाही देकर इन्हें कलम बंद कर दिया है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। ईसा ने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया। अगर उसका हर काम कलम बंद किया जाता तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ये किताबें रखने की गुंजाइश न होती।